अगले दिन अक्षय अहाना को ढेरों हिदायतें देने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकला था और वहीं से लौटते हुए अहाना की रिपोर्ट भी ले आया था। दिति, अंतरा और अयान तीनों अहाना के कमरे में उसके साथ थे। फलक मेट की मदद से घर के सारे काम संभाल रही थी और अपनी दोनों भाभियों का ख्याल रख रही थी, जिसमें दादी उसकी मदद कर रही थी। दोपहर में अहाना नीचे उतरी थी। लंच के बाद सब कुछ देर तक साथ बैठे रहे। रूपाली जी आज भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कुछ देर बाद फलक दीति को लेकर कमरे में चली गई। वो सोने के लिए बहुत परेशान कर रही थी। दादा दादी भी आराम करने कमरे में चले गए थे। अयान दूध पीकर सो गया था। दोनों बहनों को अब बात करने का मौका मिल गया था। अंतरा ने अहाना को बताया कि उसने क्या सोचा है। मैंने सोचा है, उसकी बात सुनकर अहाना ने भी उसे बता दिया कि अक्षय भी उसे कानपुर भेजना चाहता है। अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी रूपाली जी ने सारी बातें सुन ली और चुपचाप वापस अंदर चली गई। अहाना ने तो अंतरा को आगे की पूरी बात बताई, पर रूपाली जी पहले ही वहां से जा चुकी थी। रात के 8 बजे अक्षय अहाना की रिपोर्ट लेकर वापस घर लौटा था। अहाना सबके साथ नीचे ही थी। अक्षय उसे देखकर मुस्कुराया, फिर फ्रेश होने सीढ़ियों की ओर बढ़ने ही वाला था कि रूपाली जी की गंभीर आवाज़ उसके कानों से टकराई और उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। रुको अक्षय, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अक्षय, जिसने रूपाली जी से बातचीत बहुत कम कर दी थी, उनकी बात सुनकर रुक गया और सौम्य स्वर में सवाल किया, कहिए क्या बात करनी है आपको मुझसे? आप अहाना को उनके मायके भेजना चाहते हैं? अक्षय पहले उनका सवाल सुनकर चौंक गया। उसकी हैरानी भरी निगाहें अहाना की ओर घूम गई, क्योंकि अब तक उसने इस बारे में किसी से बात ही कहाँ की थी। बाकी सबके साथ साथ अहाना खुद भी उनका सवाल सुनकर हैरान थी। उसने नासमझी में कंधे उचका दिए, मतलब साफ था कि उसने उन्हें कुछ नहीं बताया और ना ही वो कुछ जानती है कि उन्हें ये कहाँ से पता चला। अक्षय ने नज़रें एक बार फिर रूपाली जी की ओर घुमाई और सहजता से हामी भर दी, जी। अक्षय ने जैसे ही उनकी कही बात पर सहमति की मुहर लगाई, रूपाली जी के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए और आंखों में निराशा झलकने लगी। तो अपनी साली, जैसे तुम भी यही समझते हो कि हमारे वजह से तुम्हारा पहला बच्चा इस दुनिया से चला गया, इसलिए इस बार अपनी बीवी को हमसे दूर रखने के लिए उसके मायके भेजना चाहते हो? कुछ तो था उनके शब्दों में जो उनके मन में टीस बनकर चुभ रहा था। अक्षय को एक और झटका लगा था उनकी बात सुनकर, पर उसने शांति से इस मुश्किल परिस्थिति का सामना करने का फैसला किया। मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं बस इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे मेरी बीवी और बच्चा दोनों सुरक्षित चाहिए, इसलिए उन्हें उनके घर भेजना चाहता हूँ, क्योंकि एक माँ से ज्यादा कोई अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता। ये बात आप ही कहती हैं, तो अहाना के लिए यही अच्छा होगा कि वो अपनी माँ के पास चली जाए। अक्षय ने बेहद नरमी और प्यार से उन्हें अपने फैसले की वजह समझाने की कोशिश की थी। हालांकि ये बस आधी सच्चाई थी, पर शायद जाते जाते भी वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिससे उसकी माँ का दिल दुखे। पर शांति की भाषा रूपाली जी को समझ कहाँ आती थी। उन्होंने नाराजगी भरी निगाहों से अक्षय को देखा और दुखी स्वर में बोली, सब समझ रहे हैं हम बेटा। तुम्हें लगता है कि हम कुछ कर देंगे तुम्हारे बच्चे को, इसलिए ये सब कर रहे हो। अगर आपको यही सब सोचना है तो सोचती रहिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पर मैं आपको इतनी बात साफ कर दूं कि सालों पहले जो हुआ उसके लिए मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि गलती मेरी थी। आपसे एक लापरवाही हुई और उसकी कीमत हमने चुकाई अपने बच्चे को खोकर। फिर भी मैं आपको दोष नहीं देता, क्योंकि गलती मेरी थी। मेरी बीवी और बच्चे की सुरक्षा मेरा फर्ज था, जिसमें मैं चूक गया। मैं उनकी हिफाजत नहीं कर सका। जब उन्हें मेरी जरूरत थी, मैं नहीं था उनके पास, और अगर अन्वय उस दिन वक्त पर नहीं पहुंचता तो शायद मैंने अहाना को भी उसी दिन खो दिया होता। अब इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अहाना की हेल्थ कंडीशन अभी वैसे ही ठीक नहीं है, उन्हें बहुत देखभाल की भी जरूरत है, इसलिए अहाना को वहां भेजना चाहता हूँ जहाँ सब उन्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। अक्षय अब भी गंभीर था, पर शांति से स्थिति से डील करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातें सुनकर रूपाली जी का मन आक्रोश से भर उठा। बेटा, बात इतनी घुमाने की जरूरत नहीं, साफ साफ कह दो कि अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार तुम भी हमें मानते हो। नहीं, उसकी इतनी ही जिंदगी लिखी थी, आपको उसके लिए दोष नहीं देता मैं, पर एक शिकायत जरूर है मुझे आपसे। मैंने तो आपकी मर्जी से अहाना से शादी की थी, फिर आप कभी उन्हें मेरी पत्नी और अपनी बहू के रूप में दिल से अपना क्यों नहीं पाई? उनके इस घर में आने के बाद से आपने हर मुमकिन कोशिश की उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने की, हमारे बीच मतभेद पैदा करने की, उन्हें जलील करने की, मेरी नजरों में गिराने की। सब जानकर भी मैं चुप रहा, कभी आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अहाना के लिए परेशानियां और बढ़ाना नहीं चाहता था। जब हालात बिगड़ने लगे और चुप रहना मुमकिन ना हुआ, तब भी मैंने आपको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की। मुझे लगा आपकी उनसे जो भी नाराजगी है वक्त के साथ खत्म हो जाएगी और आप अपना लेंगी उन्हें,
पर आप तो पता नहीं किस बात का बैर पाले बैठी थी उनसे कि उनकी इतनी खूबियों के बाद भी वो आपके दिल में जगह नहीं बना सकी। आपको उनकी कोई परवाह नहीं थी, ये जानते हुए मैं उनकी और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी आपको सौंप कर गया। आपसे बस इतनी गलती हो गई कि आप मेरे विश्वास पर खरी नहीं उतर सकी। मैं अपनी बीवी बच्चे को आपके भरोसे छोड़कर गया था। अगर आपको जाना था तो मुझे बताकर जाती, मैं वापस आ जाता। बिना किसी को कुछ बताए उस दिन उस हालात में आहाना को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था आपको, पर आप अपनी बेटी का दर्द देखकर सब भूल गईं और मेरी बीवी की खुशियों को दर्द में बदल दिया। उसके बाद भी आपको कभी उन पर दया या तरस नहीं आया। पिछली बार बहुत बड़ी गलती की थी मैंने, जिसकी सजा मेरे साथ साथ आहाना को भी भुगतनी पड़ी, और आपसे अनजाने में हुई उस गलती ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। उसके बाद भी आपने हमेशा उसके लिए आहाना को दोषी ठहराया, जाने कितने ही बेहुदा नामों से उन्हें पुकारा, उनका जीना हराम कर दिया, उन्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करने लगी। अपने उस गलत फैसले से बहुत अच्छा सबक मिला है मुझे। जानकर अपनी गलतियों को दोहराने में कोई दिलचस्पी नहीं मुझे। मैं इस बार उन्हें आपके भरोसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप उनकी सास हैं, माँ नहीं, और उन्हें माँ की जरूरत है। आपसे क्या उम्मीद रखूं मैं, जब सास क्या, आप एक औरत और इंसानियत का रिश्ता तक नहीं निभा सकी उनके साथ। अक्षय के चेहरे पर गहरी पीड़ा, दुख और अफसोस के भाव उभर आए। उसने आज ऐसी बहुत सी बातें कही जो आज तक कभी अपनी जुबान पर नहीं लाई थी। उसकी बातें सुनकर सभी शॉक्ड से एकटक उसे देखने लगे थे। रूपाली जी सदमे की स्थिति में थी, पर आज वो रुकने वाला नहीं था। उसने आहाना की ओर इशारा करते हुए आगे कहना शुरू किया, जानती है ना इन्हें, आपकी हाँ के बाद ही इनसे शादी करके इन्हें इस घर में लाया था, और आपने इनका जीना हराम कर दिया। हर पल मुझे इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए इस फैसले पर पछताने पर मजबूर कर दिया। आहाना, मुझे पहली मुलाकात, इनफैक्ट जब मैंने इनकी तस्वीर देखी थी तभी से ही पसंद आ गई थी। उसके बावजूद भी मैंने अपने दिल की बात अपने दिल में रखी और अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला लेने का हक आपको दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पसंद को आप मजबूरी में स्वीकार करें और इसका खामियाजा आहाना को भुगतना पड़े। फिर भी आहाना को अपनी हर कोशिश के बदले आपकी नफरत और कड़वाहट भरे ताने ही मिले।
शादी के अगले दिन से आप मेरी माँ से इनकी क्रूर, निर्दयी, अत्याचारी सास बन गई, जिनकी जिंदगी का बस एक लक्ष्य था अपनी बहू को अपने पैरों तले दबा कर रखना। आपने इस घर की बहू को नौकरानी बनाकर रख दिया। सुबह से लेकर रात तक गधों जैसे काम करवाती रहीं। नई नई आई थी वो इस घर में, पर उन्हें आपसे कहीं कोई मदद नहीं मिली। मिले तो आपकी कड़वी बातें, बेवजह के ताने, अपमान और उलाहने। ये जानते हुए कि आपका रवैया आहाना के प्रति कितना खराब है और वो यहाँ कितना सफर कर रही है, क्या कुछ सह रही है, आपके व्यवहार के कारण कितनी तकलीफ में है, आहाना नहीं, आप गलत हैं। मैंने कभी आहाना के सामने आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था कि आप ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी कि आपके बेटे ने अपनी बहू के सामने आपकी किसी बात का विरोध किया। आपका अहम ये बात कभी स्वीकार नहीं कर सकेगा। आहाना की नज़रों में आपका सम्मान कम हो जाएगा। आहाना के प्रति आपका व्यवहार देखकर भी खामोश रहा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो आप उसका बदला भी आहाना से लेती, और मैं नहीं चाहता था कि आपको ये लगे कि आहाना मुझे आपके खिलाफ भड़का रही है और उनकी मुश्किलें बढ़ें। पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। आपकी हर गलती पर मैं आहाना से माफ़ी मांगता रहा, उन्हें समझाता रहा कि आप दिल की बुरी नहीं हैं, बस थोड़ी सख्त हैं, और मेरी नाराज़गी उन पर निकाल रही हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी की नज़रों में मेरी माँ की इज्जत कम हो। आपके कारण कितनी बार हमारी लड़ाई हो गई, मैंने भी आपकी बातों में आकर आहाना को ही हर्ट किया। उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, आपकी हर कड़वी बात खामोशी से सुनती रहीं, आपकी हर ज्यादती चुपचाप सहती रहीं, आपकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश में लगी रहीं, सिर्फ मेरे लिए। कभी पलटकर आपको जवाब तक नहीं दिया, आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाई, मुझसे भी सब छुपाती रहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरी माँ हैं।